उत्पत्ति अध्याय 31। याकोब का गुप्त रूप से पलायन। याकोब के कानों में यह समाचार पड़ा कि लाबान के पुत्र बुड़बुड़ा रहे थे, याकोब ने तो वह सब हड़प लिया है जो हमारे पिता का था, और अब वह हमारे पिता ही की संपत्ति के आधार पर समृद्ध बना बैठा है। यहाँ याकोब ने पाया कि लाबान की अभिवृत्ति उनके प्रति अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। इस स्थिति के प्रकाश में यहावे ने याकोब को आदेश दिया, अपने पिता एवं अपने संबंधियों के देश को लौट जाओ, मैं इसमें तुम्हारे पक्ष में हूँ। इसलिए याकोब ने राहेल तथा लिया को वहीं बुला लिया जहाँ वे भेड़ बकरियों के साथ थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारे पिता की अभिवृत्ति स्पष्ट देख रहा हूँ, अब यह मेरे प्रति पहले जैसी सौहार्दपूर्ण नहीं रह गई, किंतु मेरे पिता के परमेश्वर मेरे साथ रहे हैं। तुम दोनों को ही यह उत्तम रीति से ज्ञात है कि मैंने यथाशक्ति तुम्हारे पिता की सेवा की है। इतना होने पर भी तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल किया और 10 अवसरों पर मेरे परिश्रमिक में परिवर्तन किए हैं, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें मेरी कोई हानि ना करने दी। यदि उन्होंने कहा, चित्तीयुक्त पशु तुम्हारे परिश्रमिक होंगे, तो सभी भेड़ चित्तीयुक्त मेमने ही पैदा करने लगे। यदि उन्होंने कहा, अच्छा धारीयुक्त पशु तुम्हारा परिश्रमिक होंगे, तो भेड़ धारीयुक्त मेमने उत्पन्न करने लगे। यह तो परमेश्वर का ही कृत्य था जो उन्होंने तुम्हारे पिता की ये पशु मुझे दे दिए हैं। तब पशुओं के समागम के अवसर पर मैंने एक स्वप्न देखा कि वे बकरे जो संभोग कर रहे थे वे धारीयुक्त चित्तीयुक्त एवं धब्बेयुक्त थे। परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, याकोब, मैंने कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? और उसने कहा, याकोब, देखो देखो, जितने भी बकरे इस समय संभोग कर रहे हैं वे धारीयुक्त हैं, चित्तीयुक्त है तथा धब्बेयुक्त है, क्योंकि मैंने वह सब देख लिया है जो लाबान तुम्हारे साथ करता रहा है। मैं बैथेल का परमेश्वर हूँ, जहाँ तुमने उस शिलाखंड का अभियंजन किया था, जहाँ तुमने मेरे समक्ष संकल्प लिया था। अब उठो, छोड़ दो इस स्थान को और अपने जन्म स्थान को लौट जाओ। राहेल तथा लिया ने उनसे कहा, क्या अब भी हमारे पिता की संपत्ति में हमारा कोई अंश अथवा उत्तराधिकार शेष रह गया है? क्या अब हम उनके आकलन में विदेशी नहीं हो गई है? उन्होंने हमें बेच दिया है तथा हमारे अंश की धनराशि भी हड़प ली है। निसंदेह अब तो जो संपत्ति परमेश्वर ने हमारे पिता से छीन ली है हमारी तथा हमारी संतान की हो चुकी है, तो आप वही कीजिए जिसका निर्देश आपको परमेश्वर दे चुके हैं। तब याकोब ने अपने बालकों एवं पत्नियों को ऊँटों पर बैठा दिया। याकोब ने अपने समस्त पशुओं को, अपनी समस्त संपत्ति को जो उनके वहां रहते हुए संकलित होती गई थी, तथा वह पशुधन जो पदन आराम में उनके प्रवास काल में संकलित होता चला गया था, इन सब को लेकर अपने पिता यित्साह के आवास कनान की ओर प्रस्थान किया। जब लाबान ऊन कतरने के लिए बाहर गया हुआ था, राहेल ने अपने पिता के गृह देवता प्रतिमाओं की चोरी कर ली। तब याकोब ने भी अरामी लाबान के साथ प्रवंचना की। याकोब ने लाबान को सूचित ही नहीं किया कि वे पलायन कर रहे थे, इसलिए याकोब अपनी समस्त संपत्ति को लेकर पलायन कर गए। उन्होंने फरात नदी पार की और पर्वतीय प्रदेश गिलआद की दिशा में आगे बढ़ गए। लाबान द्वारा याकोब का पीछा करना। तीसरे दिन जब लाबान को यह सूचना दी गई कि याकोब पलायन कर चुके हैं, तब लाबान ने अपने संबंधियों को साथ लेकर याकोब का पीछा किया। 7 दिन तक पीछा करने के बाद वे गिलआद के पर्वतीय प्रदेश में उनके निकट पहुंच गए। परमेश्वर ने अरामी लाबान पर रात्रि में स्वप्न में प्रकट होकर उसे चेतावनी दी, सावधान रहना कि तुम याकोब से कुछ प्रिय अप्रिय ना कह बैठो। लाबान याकोब तक जा पहुंचा, याकोब के शिविर पर्वतीय क्षेत्र में थे तथा लाबान ने भी अपने शिविर अपने संबंधियों सदृश गिलआद के पर्वतीय क्षेत्र में खड़े किए हुए थे। लाबान ने याकोब से कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? यह तो मेरे साथ छल है। तुम तो मेरी पुत्रियों को ऐसे लिए जा रहे हो जैसे युद्ध बंदियों को तलवार के आतंक में ले जाया जाता है। क्या आवश्यकता थी ऐसे छिपकर भागने की, मुझसे छल करने की? यदि तुमने मुझे इसकी सूचना दी होती तो मैं तुम्हें डफ तथा किन्नौर की संगत पर गीतों के साथ सहर्ष विदा करता। तुमने तो मुझे सुअवसर ही ना दिया कि मैं अपने पुत्र पुत्रियों को चुंबन के साथ विदा कर सकता। तुम्हारा यह कृत्य मूर्खतापूर्ण है। मुझे यह अधिकार है कि तुम्हें इसके लिए प्रताड़ित करूं, किंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने कल रात्रि मुझ पर प्रकट होकर मुझे आदेश दिया है कि मैं तुमसे कुछ भी प्रिय अप्रिय ना कहूं। ठीक है, तुम्हें अपने पिता के निकट रहने की इच्छा है, मान लिया, किंतु क्या आवश्यकता थी तुम्हें मेरे गृह देवताओं की चोरी करने की? तब याकोब ने लाबान को उत्तर दिया, मेरे इस प्रकार आने का कारण थी मेरी यह आशंका कि आप मुझसे अपनी पुत्रियां बलात् छीन लेते, किंतु आपको जिस किसी के पास से वे गृह देवता प्राप्त होंगे उसे जीवित ना छोड़ा जाएगा। आपके ही संबंधियों की उपस्थिति में आप हमारी संपत्ति में से जो कुछ आपका है ले लीजिए। याकोब को इस तथ्य का कोई संज्ञान ना था कि राहेल ने उन गृह देवताओं की मूर्तियों को चुराई है। इसलिए लाबान याकोब के शिविर के भीतर गया, उसके बाद लिया के शिविर में और उसके बाद परिचारिकाओं के शिविर में, किंतु वह देवता उसे प्राप्त ना हुआ। तब वह लिया के शिविर से निकलकर राहेल के शिविर में गया। राहेल ने ही वे गृह देवता छिपाए हुए थे जिन्हें उसने ऊंट की काठी में रखा हुआ था, वह स्वयं उन पर बैठ गई थी। लाबान ने समस्त शिविर में खोज कर ली थी किंतु उसे कुछ प्राप्त ना हुआ था। उसने अपने पिता से आग्रह किया, पिताजी आप क्रूद ना हो, मैं आपके समक्ष खड़ी होने के असमर्थ हूँ क्योंकि इस समय मैं राजस्वला हूँ। तब लाबान के खोजने पर भी उसे वे गृह देवताओं की मूर्तियां नहीं मिली। तब याकोब का क्रोध उद्दीपित हो उठा, वह लाबान से तर्क वितर्क करने लगे, क्या अपराध है मेरा, क्या पाप किया है मैंने जो आप इस प्रकार मेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं? आपने मेरी समस्त वस्तुओं में उन देवताओं की खोज कर ली है किंतु आपको कोई भी अपनी वस्तु प्राप्त हुई है? आपके तथा मेरे संबंधियों के समक्ष यह स्पष्ट हो जाए कि हम दोनों के मध्य अपना निर्णय दे सके। इन 20 वर्षों तक मैं आपके साथ रहा हूँ, आपकी भेड़ों एवं बकरियों में कभी गर्भपात नहीं हुआ, अपने भोजन के लिए मैंने कभी आपके पशु वृंद में से मेंढे नहीं उठाए, जब कभी किसी वन्य पशु ने हमारे पशु को फाड़ा मैंने उसे कभी आपके वृंद में सम्मिलित नहीं किया, इसे मैंने अपनी ही हानि में सम्मिलित किया था। चाहे कोई पशु दिन में चोरी हुआ अथवा रात्रि में, आपने मुझसे भुगतान की मांग की। मेरी स्थिति तो ऐसी रही कि दिन में मुझ पर ऊष्मा का प्रहार होता रहा तथा रात्रि में ठंड का, मेरे नेत्रों से निद्रा दूर ही दूर रही। इन 20 वर्षों में मैं आपके परिवार में रहा हूँ, 14 वर्ष आपकी पुत्रियों के लिए तथा 6 वर्ष आपके भेड़ बकरियों के लिए। इन वर्षों में आपने 10 बार मेरा परिश्रमिक परिवर्तित किया है। यदि मेरे पिता के परमेश्वर अब्राहम तथा यित्साहा के परमेश्वर का भय मेरे साथ ना होता तो आपने तो मुझे रिक्त हस्त ही विदा कर दिया होता। परमेश्वर ने मेरे कष्ट एवं मेरे हाथों के परिश्रम को देखा है और उसका प्रतिफल उन्होंने मुझे कल रात में प्रदान कर दिया है। यह सब सुनकर लाबान ने याकोब को उत्तर दिया, ये स्त्रियां मेरी पुत्रियां हैं, ये बालक मेरे बालक हैं, ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, तथा जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वह मेरा ही है। किंतु अब मैं अपनी पुत्रियों एवं इन बालकों का क्या करूं जो इनकी संतति है? इसलिए आओ हम परस्पर यह वाचा स्थापित कर ले, तुम और मैं, और यही हमारे मध्य साक्ष्य हो जाए। इसलिए याकोब ने एक शिलाखंड को स्तंभ स्वरूप खड़ा किया। याकोब ने अपने संबंधियों से कहा, पत्थर एकत्र करो। इसलिए उन्होंने पत्थर एकत्र कर एक ढेर बना दिया तथा उस ढेर के निकट बैठ उन्होंने भोजन किया। लाबान ने तो इसे नाम दिया येगेर सहुदूथा, किंतु याकोब ने इसे गलियत कहकर पुकारा। लाबान ने कहा, पत्थरों का यह ढेर आज मेरे तथा तुम्हारे मध्य एक साक्ष्य है, इसलिए इसे गलियत तथा मिज़्पा नाम दिया गया, क्योंकि उनका कथन था, जब हम एक दूसरे की दृष्टि से दूर हो, यहावे ही तुम्हारे तथा मेरे मध्य चौकसी बनाए रखे। यदि तुम मेरी पुत्रियों के साथ दुर्व्यवहार करो अथवा मेरी पुत्रियों के अतिरिक्त पत्नियां ले आओ, यद्यपि कोई मनुष्य यह देख ना सकेगा, किंतु स्मरण रहे तुम्हारे तथा मेरे मध्य परमेश्वर साक्ष्य है। लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को तथा इस स्तंभ को देखो जो मैंने तुम्हारे तथा मेरे मध्य में स्थापित किया है। यह स्तंभ तथा पत्थरों का ढेर साक्ष्य है कि मैं इसके निकट से होकर तुम्हारी हानि करने के लक्ष्य से आगे नहीं बढ़ूंगा। वैसे ही तुम भी इस ढेर तथा इस स्तंभ के निकट से होकर मेरी हानि के उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ोगे। इसके लिए अब्राहम के परमेश्वर, नाहोर के परमेश्वर तथा उनके पिता के परमेश्वर हमारा न्याय करें। इसलिए याकूब ने अपने पिता यित्साहक के प्रति भय भाव में शपथ ली। फिर याकूब ने उस पर्वत पर ही बलि अर्पित की तथा अपने संबंधियों को भोज के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भोजन किया तथा पर्वत पर ही रात्रि व्यतीत की। बड़े तड़के लाबान उठा, अपने पुत्र पुत्रियों का चुंबन लिया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर लाबान स्वदेश लौट गया।